नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए लोगों से देश में बने उत्पादों को खरीदने का आग्रह किया। श्री मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटेगा। आयोग के लिए सभी राजनीतिक दल समान हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष पर कल व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ कई यूरोपीय नेता शामिल होंगे। और इपोह में भारत की देविका सिहाग ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार होंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी।
सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे।
श्री नड्डा ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाना है, जिससे कि उपराष्ट्रपति चुनाव आम सहमति से संपन्न हो जाएं। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह एनडीए के सहयोगी दलों और विपक्ष से इस बारे में संपर्क किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित बोर्ड के अन्य सदस्य इस बैठक में शामिल हुए। चुनाव अगले महीने की 9 तारीख को होगा। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के कारण ये चुनाव कराना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए लोगों से भारत में बने उत्पादों पर भरोसा करने और उन्हें खरीदने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने यह बात कही।
सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा, भारत में बने सामान पर हम भरोसा करें। भारतीय हैं तो भारत में बना ही खरीदें। अब त्योहारों का सीजन चल रहा है, अपनों के साथ अपने लोकल उत्पादकों की खुशियां बांटें। आप तय करें गिफ्ट वही देना है जो भारत में बना हो।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को मजबूत बनाने और इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए चरखाधारी मोहन के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है।
दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाने का जो बीड़ा हमने उठाया है वो निरंतर जारी है। द्वारका एक्सप्रेसवे हो या फिर अर्बन एक्सटेंशन रोड, दोनों सड़कें शानदार बनी है। साथियों, अर्बन एक्सटेंशन रोड की एक और विशेषता है, ये दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से भी मुक्त करने में मदद कर रही है।
श्री मोदी ने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और शहरी विस्तार रोड 2 का उद्घाटन हो जाने से एनसीआर में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में काफी सुधार होगा।
दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी में बीते दशक में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। यहाँ आधुनिक और चौड़े एक्सप्रेसवे हैं। दिल्ली एनसीआर मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क इलाकों में से एक है। यहाँ नमो भारत जैसा आधुनिक रैपिड रेल सिस्टम है। यानी बीते 11 वर्षों में दिल्ली एनसीआर में आना जाना पहले के मुकाबले आसान हुआ है।
निर्वाचन आयोग ने आज कहा कि उसके लिए सभी दल समान हैं और वो राजनीतिक दलों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा।
कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है। चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा।
श्री ज्ञानेश कुमार ने जानना चाहा कि इतनी पारदर्शी प्रक्रिया और इतने सारे लोगों के बावजूद वोट कैसे चुराए जा सकते हैं।
लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, 10 लाख से भी अधिक बूथ लेवल एजेंट्स, 20 लाख से भी अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स चुनाव के लिए कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में गलतियों को सुधारने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान की शुरुआत बिहार से हुई है और मतदाता सूची का प्रारूप तैयार हो चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस यूक्रेन संघर्ष पर कल व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ कई यूरोपीय नेता शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेरज, यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने अपनी मौजूदगी की पुष्टि की है। एक रिपोर्ट।
ये बैठक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के वीडियो फोन के बाद हो रही है, जिसमें उन्होंने रूस के साथ शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सराहना की थी। यूरोपीय नेताओं का उद्देश्य यूरोप की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए यूक्रेन में शांति स्थापना के लिए यूरोप और अमेरिका के बीच समन्वय को मजबूत करना है। नेटो के महासचिव मार्क रुटे और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के भी बैठक में शामिल होने की संभावना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
भारत और नेपाल ने सहयोग और साझेदारी को मजबूत बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज काठमांडू में कई उच्चस्तरीय बैठकें की। वे नेपाल के 2 दिन के सरकारी दौरे पर हैं। श्री मिश्री ने आज नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से राष्ट्रपति कार्यालय में मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने तथा ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने से जुड़े मामलों पर चर्चा की। विदेश सचिव ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने नेपाल भारत साझेदारी को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 2 दिन के भारत दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। सत्ताधारी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य वांग यी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। यात्रा के दौरान श्री वांग यी भारत के विशेष प्रतिनिधि अजित डोभाल के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर भी उनके साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज मुंबई के निकट कांदिवनी में मौली नामक पहले पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का उद्घाटन किया। स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा पूरी तरह से प्रबंधित इस हब की विशिष्टता का उल्लेख करते हुए श्री गोयल ने बताया कि इन महिलाओं ने खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है और अब वे स्वच्छ तथा सुरक्षित व्यवसाय चलाने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल महिलाओं को आजीविका का एक सम्मानजनक साधन प्रदान किया गया है, बल्कि स्थानीय उद्योग भी मजबूत हुए हैं। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब खाद्य सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों से 2047 तक समृद्ध भारत के उद्देश्य को साकार करने के लिए आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया है। शिक्षा मंत्री ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के परिसर में छात्रों और अध्यापकों के साथ बातचीत में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। श्री प्रधान ने क्षमताओं को बढ़ाने और नवाचार की भावना का विस्तार करने पर भी अपने विचार साझा किए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश में मोटापे और मधुमेह के रोगियों के लिए भारतीय उपचार खोजने का आह्वान किया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पेट का मोटापा भारतीयों के लिए पश्चिमी देशों के लोगों के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने भारतीय युवा समुदाय के संदर्भ में बचाव प्रक्रियाएं अपनाने को भी कहा। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ कल से नई दिल्ली में 30वीं राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित करेगी। ये विद्यापीठ आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। आयुष मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस वर्ष का विषय है आयुर्वेद के माध्यम से बाल चिकित्सा में रोग और कल्याण का प्रबंधन। सिक्किम और कालिम्पोंग को देश के अन्य भागों से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 को आज यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया। ये राजमार्ग लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण पिछले 6 दिन से बंद था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब बात खेलों की। भारत की देविका सिहाग ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। इपोह में आज खेले गए फाइनल में उन्होंने अपने ही देश की ईशा रानी बरुआ को 15-7, 15-12 से हराया। देविका जर्मनी में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन टीम का हिस्सा रही हैं। 134वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के चौथे और अंतिम क्वार्टर फाइनल में इस समय कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक ईस्ट बंगाल FC 2-1 से आगे है। इससे पहले जमशेदपुर में आज डायमंड हार्बर FC ने जमशेदपुर FC को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। शिलोंग लाजोंग SC और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC कल अपने अपने मैच जीतकर पहले ही अंतिम चार में जगह बना चुके हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आज तड़के बादल फटने और अचानक आई बाढ़ की 2 अलग-अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार ने बताया कि प्रभावित लोगों को हेलीकॉप्टरों की मदद से निकाला जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रशासन को लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राहत बचाव और निकासी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि किश्तवाड़ के चिसोती गांव में बादल फटने के बाद लापता और मलबे में दबे लोगों का पता लगाना तत्काल प्राथमिकता है। डॉक्टर सिंह बादल फटने से प्रभावित चिसोती गांव शुक्रवार आधी रात पहुंचे और बचाव और राहत कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शायद पहली बार इस क्षेत्र में इतनी बड़ी आपदा आई है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस महीने की 19 तारीख तक कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र में तेज बारिश की संभावना है। अगले कुछ दिनों तक दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में भी मूसलाधार वर्षा जारी रहेगी, जिसमें आज तेलंगाना में तेज बारिश होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA के उम्मीदवार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए लोगों से देश में बने उत्पादों को खरीदने का आग्रह किया। श्री मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटेगा। आयोग के लिए सभी राजनीतिक दल समान हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष पर कल व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ कई यूरोपीय नेता शामिल होंगे। और इपोह में भारत की देविका सिहाग ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।